الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم نگر مشبہ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جب میرا نام محبوب الرحمن ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچپن میں جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں چندہ ماما وغیرہ کی جبکہ چاند تو ہمارا مامو نہیں ہوتا تو کیا یہ کہانیاں جھوٹ ہیں؟
اب بیٹا چاند کی کیا کہانی سنائی دی تو مجھے بھی نہیں پتا، اب چندہ ماما یہ بس چلا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ چاند نہ مامو ہوتا ہے نہ ہر مامو چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو مامو مامو ہوتا ہے تو یہ ہے، اب وہ کون سی کہانی تھی؟ اب کسی نے آپ کو چاند کے متعلق سنایا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جھولے مبارک میں پنگورے میں جب جھولا کرتے تھے بچپن میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جس طرف جاتی تھی چاند اس طرف چلا جاتا تھا، تو چاند کے بارے میں کسی نے یہ بات بتائی تو صحیح بتائی ہے، وہ ہے نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، تو چاند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بات ہی درست ہے، معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو اب یہ کہ چاند کے بارے میں ایسی کون سی کہانی یا کون سا واقعہ بیان کیا ہے، بیٹا جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ ٹھیک ہے
منشورا، ہم اپنے گھر میں بکری پالنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے ہمیں سے روکتے ہیں کہ بہت گندگی ہوگی، اور بکری جو ہے وہ اصل دودھ دیتی ہے اور بغیر ملاوٹ کا۔
ہر جانور بغیر ملاوٹ کا دودھ دیتا ہے بیٹا، گائے بھی بغیر ملاوٹ کا دودھ دیتی ہے، گائے تھوڑی دودھ جب دیتی ہے تو ملاوٹ والا نکالتی ہے، گائے کا ہو کہ بھینس کا ہو یا بکری کا ہو یا اونٹنی کا ہو، جو دودھ دیتی ہے وہ تو اصلاً تو دودھ اصلی نکلتا ہے نا بیٹا، یہ تو انسان ہے جو بیٹا دودھ نکالنے کے بعد اس میں پھر ملاوٹیں کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب رہی بات بیٹا بکری کی، تو اب گھر والے دیکھو بیٹا بکری کا یہ ہوتا ہے کہ بکری کے لیے یا جانور کے لیے بیٹا جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ عام بنگلوں میں یا فلیٹ ہے، فلیٹ میں کہاں بیٹا بکری رکھو گے، ہمارے ویسے فلیٹ میں آدمی پورے نہیں رہ پاتے، بکریاں کہاں پھیریں گی، تو بکری کے لیے تھوڑا کھلی جگہ چاہیے، پار چاہیے، مٹی چاہیے، باہر کا ماحول چاہیے، جانور گندگی بھی کرے گا نا تو پھر اس کی صاف صفائی کا سارا نظام ہونا، جب اپنے بکری لا کر دوسرے جانور لا کر رکھ دیں ہم دو منٹ آدھا گھنٹہ کھیلیں گے اس کے بعد سارا دن امی صفائی کرتی رہے گی، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر میں پہلے بھی بیٹا بیان کرتا ہوں، کئی پروگرام میں نے بیان کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خرچہ لاتی ہیں، ایکسپینس لاتی ہیں، اب خالی جانور ہی کا تو خرچہ نہیں ہے نا، اب بکری لائے یا گائے لائے، بعض بچے جلدی جلدی کرتے بکرا عید آ گئی ہے جلدی سے گائے لے لو، جلدی سے بیل لے لو، جلدی سے بکرا لے لو، ہے نا، اب جلدی لے تو لیں گے اور روز کا جو 200 روپے کا کھانا کھلانا پڑے گا اس کو، یا بڑا جانور ہے تو 500 روپے کا 1000 روپے کا اس کو چارہ گھاس کھلانا پڑتا ہے نا، اب یہ اگر مثال کے طور پر امی ابو یا گھر والے افورڈ نہیں کر سکیں گے تو پرابلم ہوگا نا بیٹا، تو آپ خواہش کریں، کیا کریں، جو بھی جائز اچھا اور نیک کام ہے اس کی خواہش ضرور کریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ امی مجھے یہ چاہیے یا ابو مجھے یہ چاہیے، لیکن جب بھی امی ابو اس معاملے میں ہمیں سمجھائیں تو پھر ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے، جب امی ابو ابھی جب ہم نہیں جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، جب آپ کو بولنا تب بغیر بولے امی ابو وہ چیزیں لاتے تھے جو آپ کو پسند تھی، کھلونے کی کب فرمائش کی تھی، ہیں جب بالکل چھوٹے تھے سردی لگتی تھی تو گرم کپڑے امی ابو لاتے تھے نا، اسی طرح بہت ساری چیزیں ابو لے آتے تھے جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن وہی لاتے تھے جو آپ کے لیے بہتر تھا، اب جب بولنا آ گیا तो जब आपके बगैर बोले हम अम्मी अबू आपकी ख्वाहिश पूरी करते थे, तो बोल कर क्यों नहीं करेंगे? इसका पता चला कि हम बोलते हैं और जब वो बेहतर होता है कर सकते तो अम्मी अबू करते हैं, वरना मना करें तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, अब आप सवाल करें।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर वैन वाले अंकल मोबाइल यूज करते हुए सिग्नल तोड़ दें तो क्या ये दुरुस्त है?
बेटा वैन वाले अंकल हो या कोई भी आम गाड़ी चलाने वाला हो, कानून बेटा ये है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ये अलाउ ही नहीं है।
जी।
डोंट यूज मोबाइल व्हाइल यू ड्राइविंग, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है स्पेशली। तो मतलब ये चला नहीं चाहिए, मगर लोग तो फैमिली के साथ बैठकर भी गाड़ियों में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, मतलब आपको अपनी जान की भी परवाह तो रही नहीं, आपको फैमिली की बच्चों बीवी बच्चों की जान की भी परवाह नहीं है, ऐसा तो ना करें। तो मेहरबानी करके जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप उस टाइम में मोबाइल यूज ना करें। ये मैं तमाम तक गाड़ी चलाने वाले इस्लामी भाइयों को अर्ज कर रहा हूँ। सेकंड ये है कि सिग्नल तोड़ना, अब मोबाइल यूज करें या ना करें, सिग्नल तोड़ना ये तो इंतहाई गलत बात है और एक जुर्म है। ये भी मतलब जो समझे कि क्रिमिनल एक्टिविटी है और ये बहुत सख्त जुर्म है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जो समझे कि इसको इतना इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन मैंने तो बाहर देखा है कि बाहर तो सिग्नल पर तो बड़ी सख्ती के साथ अमल किया जाता है, और एक जो बॉर्डर बने हुए होते हैं सिग्नल से पहले, उससे पहले ही मतलब कि गाड़ी खड़ी जाए। बल्कि मैंने बाद ममालिक का सफ़र किया है तो वहाँ पर सिग्नल नहीं है, लेकिन चूंकि एक ड्राइविंग मैनर्स हैं, ड्राइविंग का अंदाज है, टेस्ट देकर बेचारे वो टेस्ट देकर पास होते हैं और टेस्ट देकर लाइसेंस लेते हैं, तो जब ये जा रहे होते हैं तो बाकायदा रोड पर स्टॉप लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब वो या तो वो इस रोड इस तरह के होते हैं कि यहाँ से भी गाड़ी यहाँ से गाड़ी आनी है, कोई सिग्नल नहीं होता, लेकिन ये स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं, विद इन अ सेकंड खड़े होते हैं और देखते हैं कि राइट लेफ्ट से गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, फिर ये गाड़ी चलाते हैं। तो ये इनके लिए कानून है कि जहाँ स्टॉप लिखा हुआ है वहाँ इन्होंने स्टॉप होना है। कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई भी सिग्नल नहीं होता, लेकिन ड्राइविंग मैनर्स हैं, प्रैक्टिस है, क्योंकि कानून है, पकड़ते हैं। हमारे यहाँ और बाद ऐसे ममालिक है जहाँ कोई मतलब के रूल पर अमल करने का मसला ही मसला है, कोई रोकता है तो कोई रुकता नहीं है, और सिग्नल पर सिग्नल तोड़ते हैं, इसमें एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, आप जब जैसे इन्होंने एक सवाल किया, अब मैंने तो समझा दिया, मैंने मना कर दिया, फॉर एग्जांपल के बच्चा को सवाल ही नहीं कर रहा और बच्चा देख रहा है कि मैं जिनके साथ बैठता हूँ आइदर वो हमारे वैन के अंकल हैं या हमारे अब्बू हैं या व्हाटएवर या टैक्सी ड्राइवर है, जो भी अगर ये देखेंगे और इनको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, तो नतीजा क्या होगा कि जब ये ड्राइविंग करेंगे तो इनको लगेगा कि इस पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब सभी करते हैं तो मैं भी करूं, और इससे इनकी जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। हादसे की सूरत में तो बेटा हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, कमर टूट जाती है, बंदा मोहताज हो जाता है, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो भी ड्राइविंग करते हैं, अव्वल तो गैर कानूनी ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए, लाइसेंस लेकर ड्राइविंग करनी चाहिए और प्रॉपरली कानून के मुताबिक ड्राइविंग करनी चाहिए। सिग्नल पर आपको बिल्कुल खड़ा होना है, सिग्नल बिल्कुल ना तोड़ें, और मोबाइल फ़ोन से भी अवॉइड करें। बाद मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है, झटके वाली खबर आ सकती है, खुदा ना खास्ता ड्राइविंग करते करते दिमाग पर असर पड़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, और आपको भी नुकसान पहुंचेगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचेगा जो रोड पर चल रहे होते हैं। तो अल्लाह हम सबको एहतियात करने और कानून पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो कानून शरीयत से नहीं टकराता इस पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक के जो कानून बने हुए हैं, जो ड्राइविंग के कानून बने हुए हैं, वो तकरीबन सभी इन हम लोगों की बेहतरी के लिए ही होते हैं, ताकि हमारा हमारे जानो माल का तहफ़ हो सके। और बेचारे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, कितना रोकते हैं, दुनिया में इतने पुलिस वाले बाजों का नज़र ही नहीं आते ट्रैफिक के तौर पर, लेकिन वहाँ भी कानून पर अमल कर ही रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो इतने बेचारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, इनके साथ भी जो ज्यादती करते हैं, इनके टांग पर भी मोटरसाइकिल चलाकर भाग जाते हैं, ये बेचारे इनके साथ भी अजीब सलूक करते हैं। तो ये अपना कोशिश करते कानून पर अमल करवाने की, तो अमल कीजिएगा और बच्चों को भी बताएं कि इस तरह ड्राइविंग पर अमल किया जाता है। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा
गणेश शुराम, मेरा आपसे सवाल ये है कि स्कूल की वैन वाले अंकल हर चीज में जल्दी करते हैं, जल्दी में कोई चीज हमसे रह जाए तो डांटते हैं और वैन भी नहीं रोकते, वो ऐसा क्यों करते हैं?
वो बेटा इसलिए करते हैं कि इनको सब बच्चों को लेकर जल्दी से पहुंचना होता है। अब हर बच्चा 5 मिनट 7 मिनट लेट करेगा तो आप बताइएगा, अब 8 बजे, ये भी तो बेटा पाबंद है ना कि इनको 8 बजे या 8 से पहले गेट पर पहुंचना है सारे बच्चों को लेकर, ठीक है ना। अब इनको पहुंचना है, अब ये बेचारे 6:30-7 बजे निकले घर से लेने के लिए, तो इसमें होना ये चाहिए कि बिल्कुल बैग तैयार करके, चप्पल जूते पहनकर, इमामा पहनकर, हर तरह से तैयार होकर हमें बिल्कुल वैन वाले का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप नीचे उतर कर बैठे, अब तो सर्दियां भी हैं, लेकिन बिल्कुल गेट पर रहना चाहिए। जैसे ही ये हॉर्न बजाएं, आपको बुलाएं, हर वैन वाले 2-3 मिनट देते ही हैं, तो जैसे ही ये दें फौरन आपको उतर कर वैन में बैठ जाना चाहिए, इनको वेट नहीं करना। अब ये हर बच्चा बेटा अगर 3-3, 4-4 मिनट लेट करेगा तो टोटली आधा घंटा लेट हो जाएगा, 1/4 घंटा लेट हो जाएगा। तो सिर्फ 2-3 बच्चों की वजह से सारे बच्चे लेट पहुंचेंगे तो पूरा निज़ाम बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जल्दी तैयार करके रखें और वैन का जो एक उसूल और कानून है इस पर अमल करें। हाँ, अलबत्ता मेरी वैन वालों से ज़रूर दरख्वास्त है कि बच्चों को सही बैठने दें, ऐसा ना करें कि सही बैठा ही नहीं और आपने वैन चला दी या गाड़ी चला दी, या इनकी सीटें आपने सही नहीं रखी हैं, या ओवरलोडिंग आपने कर ली है कि मतलब कि 12 बच्चों की जगह है तो आपने सिर्फ पैसों के लिए 15 बच्चे भर दिए या 17 बच्चे भर दिए, ये भी गलत है। जो भी वैन चलाते हैं बच्चों को बड़े मतलब के तरीके से बिठाएं और गेट बंद करें, बाजों का बच्चे खुद ही गेट बंद करें, किसी और बच्चे का हाथ आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। अच्छा, ये चीज़ें वालिदैन को देखनी है कि वैन वाले जो हैं ये बच्चों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। बाद बच्चे पीछे लटक रहे होते हैं, बाद बच्चे मतलब के झूम रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, वैन वाले को इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये वैन वाले की भी इसमें ज़िम्मेदारी है, जो तालीमी इदारे हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी है, और जो वालिदैन हैं इनकी भी ज़िम्मेदारी है। बच्चे बच्चे होते हैं, ये तो उछलते कूदते इधर भी भागेंगे उधर भी भागेंगे, आपका काम है। आप जहाज़ में देखें बच्चों के साथ किस कदर मतलब के बच्चों के सीट बेल्ट अलग है बच्चों के, और हमने जहाज़ में देखा है कि जब बच्चे सीट पर बैठते हैं तो इनका ट्रीटमेंट अलग है, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, इनके लिए तो वो जो पेरेंट्स को लेकर बैठते हैं, पेरेंट्स को बाकायदा बच्चों के लिए जो क्रू होता है, केबिन क्रू अमला होता है, वो बाकायदा बच्चों के लिए अलग से समझाता है बच्चों को कि आपको यूँ करना है। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हमारे यहाँ दुनिया में ऐसा नहीं होता, मैंने दुनिया में देखा है, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के अंदर बच्चों के बसेस होती हैं, वो बसें जिस तरह चलती हैं, उनको रुकना जहाँ होता है, इनके अलग से जगहें बनी होती हैं, इनके बोर्ड निकले हुए होते हैं, और पूरे प्रिंसिपली तौर पर रूल्स के साथ चलते हैं ताकि बच्चों को लगे नहीं, बच्चों को ऐसी जगह ना उतारे जहाँ से बच्चों को रोड पार करके जाना पड़े, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, ये उछल कूद करेंगे, रोड पार करेंगे, खुदा ना खासा रोड क्रॉस करेंगे, इनके एक्सीडेंट हो जाने का डर है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं, इसके अलावा और बहुत सारी एहतियातें, बच्चों को भी समझना है, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को समझाएं, लेकिन ज़ाहिर बच्चा तो फिर इनको बच्चा कौन कहेगा, तो ये भी समझे भी, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपने देखना कि मेरे बच्चों को मैं किसके साथ भेज रहा हूँ, वो कैसे इनका पिक एंड ड्रॉप करते हैं। सेकेंडली वैन वाले की जिम्मेदारी है कि वो इतना मैच्योर्ड और उसकी इतनी तरबियत हुई हो, ऐसे नहीं हर कोई ड्राइवर वैन वाला ड्राइवर हर कोई नहीं बन सकता, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हर एक पैसेंजर की गाड़ी नहीं चला सकता, ये मेरी अपनी सोच अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी जो नाकी शक्ल में आ रहा है वो मैंने आपके सामने अर्ज किया। थर्डली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तालीमी इदारे की है जो बच्चों को वैन के हैंड ओवर करते हैं और बच्चों को लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये जो वैन का जो ड्राइवर है इसका एटीट्यूड कैसा है, अच्छा वो वैन में चलाता क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है या नाचना गाना और गाने हैं, ये सब देखें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले और भी वैन के अंकल के बारे में जो इस्लाम भाई होते हैं इनके बारे में सवाल हुआ, तो मैंने मजमूई तौर पर कुछ बातें अर्ज़ की हैं। और बाज़ सवाल ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, बड़ों को भी। तो मैं बच्चों को भी डायरेक्ट अर्ज कर देता हूँ, आपको भी कहता हूँ, बच्चों वैन में तसल्ली के साथ बैठें, सुकून के साथ बैठें, जब तक वैन मुकम्मल रुक ना जाए और ड्राइवर अंकल जो है वैन के अंकल आपको कह ना दें कि बेटा आप उतर जाओ। मैं तो इसका भी माजरत के साथ आपको शायद बुरा ना लग जाए, जहमत तो होगी, लेकिन वैन के अंकल खुद उतरे, गेट खोलें, बच्चे को उतारें और बच्चे को हैंडओवर करें और यूं करें। या आपके साथ कोई वो वैन के साथ या बस के साथ कोई ऐसा इस्लामी भाई होना चाहिए, मैं नहीं कहता भाई बस में भी तो कंडक्टर होते हैं ना, है कि ड्राइवर स्टॉप पर रोकर खुद ही मतलब कि टिकट लेना शुरू कर देता है, आप बोले कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कि हमारे पास सैलरीज इतनी नहीं है, बच्चों की वो फीस इतनी नहीं होती वैन की। तो ये सारा मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों की जान माल अखलाक किरदार आदात इनके तहफ़ भी तो एक ज़रूरी है ना। तो डेफिनेटली जब आप जितनी प्रिकॉशंस बढ़ाएंगे, तहफ़ बढ़ाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ जर्नल डिस्कशंस आपसे की हैं, जो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना, जामतुल मदीना, दारुल मदीना, दीगर जो हैं इनके लिए स्पेशली तौर पर मैंने ये सारी बातें अर्ज़ की हैं, और आप पेरेंट्स के लिए अर्ज़ की हैं, बच्चों के लिए अर्ज़ किया है, और इसके साथ साथ जर्नली तमाम आशिकाने रसूल को चाहिए कि अमल करें, बच्चे ख़ास तौर पर अमल करें। बेटा कुछ लगेगा ना तो आपको चोट लगेगी, बहुत तकलीफ होती है चोट से, तो आप भी जब ये आपको समझाया जाए तो बेटा मान जाना, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जवाब था, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जी बेटा,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम सलीत रजा है, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो बच्चे कंचे और लट्टू वगैरह से खेलते हैं तो क्या ये खेलना भी गलत है?
नहीं खेलना चाहिए, लट्टू कंचे वंचे ये सब अच्छे बच्चे नहीं, बच्चों को इसे दूर रहना चाहिए। ये मेला कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, मिट्टी से खेलना पड़ता है, फिर लट्टू लग जाता है, लट्टू उड़ जाता है, और फजूल किस्म गेम, इससे ना सेहत मिलती है ना कोई ज़हनी फायदा होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। जी बेटा,
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है। जाने शुरू मेरा आपसे सवाल है कि क्लास में कुछ बच्चे हमारी चीज़ें छीन लेते हैं और मांगने पर कहते हैं ये तो हमारी है, टीचर के पूछने पर भी झूठ बोलते हैं, ऐसे में हम क्या करें?
सबसे पहले तो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें, ठीक है बेटा, अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। दूसरी बात, अपनी चीज़ों पर बेटा निशान लगा दें। अमीर सुन्नत ने दारुल मदीना वालों को तो बताया हुआ है कि बच्चों को निशानात दे दें, इनकी साइंस दे दें, अलामात दे दें। अब यही काम मदरसतुल मदीना में नहीं तो होना चाहिए, जामतुल मदीना में नहीं तो होना चाहिए, और भी इदारों में होना चाहिए कि बच्चों की चीज़ों पर निशानात हों। और ये पता होना चाहिए टीचर्स को, बड़ों को भी, कि हमारे इस बच्चे का निशान क्या है, उसके निशान का, उसका आईडी कार्ड जो आप इसके बनाते हैं, आईडी कार्ड पे उसका निशान बना दें। तब अब ये बच्चा जब क्लेम करेगा कि ये मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ये कॉपी मेरी है या ये बुक मेरी है या ये बॉक्स मेरा है, पेंसिल बॉक्स वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें, इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर निशान नहीं लग सकते, तो उसका फिर कोशिश करें कि उसकी को और संभालने की सूरत बनाएं। तो सबसे पहले तो अपनी चीज़ों पर निशान लगाएं, निशान लगाने के बाद फिर अपनी चीज़ों की बेटा हिफाजत करें।
निगरानी शुरू, कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं उनको कोई बोलो तो इसने हमारी चीज़ ली है और ये झूठ बोल रहा है, ये हमारी इसकी नहीं है, तो कहते हैं कि हमारा एडिक नहीं है, ये आपका मसला है।
नहीं, ये ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि हमारा मसला है, क्योंकि जब बच्चा इस बात का क्लेम करे, कहे तो ये चीज़ मेरी है, तो फिर उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए बड़ों को कि किसका, अगर खुदा ना खासा कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको झूठ बोलने की आदत से भी नजात दिलानी है ना। और जिसका हक ज़ाया हुआ है उसको उसका हक भी दिलाना है, तो ये तो होता रहे होता होगा। इसमें टीचर्स को बड़ों को चाहिए कि फिर वो ये ना करें। अब जैसे घर में दो भाई हैं, दो भाइयों ने एक दूसरे की चीज़ ले ली, तो अब अबू को बोले कि अबू इसने मेरी चीज़, अबू बोले तुम्हारा मसला है, तो ये तो नहीं होगा। अबू को तो मसला हल करना है ना, अम्मी को मसला हल करना है, तो हमें मसला हल करना है। और दूसरी बात, ये नाबालिग बच्चे होते हैं ज़्यादा, तकरीबन बच्चे नाबालिग ही होते हैं जो यूँ जिनके मुतालिक इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नाबालिग बच्चों की चीज़ को नाबालिग भी ले ले, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो ये तो हमारे को समझना है और इसके एहतियाती तदाबीर हमने करनी है और बच्चों की तरबियत भी हमने करनी है। तो किसी बच्चे की कोई चीज़ ज़ाया कैसे हो। तो बच्चों अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, इसको संभाल कर रखें और निशानात पे लगा कर रखें। और अगर खुदा ना खास्ता क्लास के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बच्चों की सुनवाई करके जो भी मामला है इसको हल भी करने की बड़ों को कोशिश करनी चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बेटा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
हमें दूध पीने का कहा जाता है, लेकिन आजकल दूध में इतनी मिलावट होती है, तो हमें दूध पीना से फायदा होगा या नुकसान होगा?
ये जो बेटा घरों में जो गाय का दूध या बकरी का, जिस तरह ये दूध हमारे घरों में आते हैं, गाय भैंस के दूध आते हैं नॉर्मली घरों में, अगरचे बेटा इसमें मिलावट का भी इसमें मामला होता है, पानी की ज़्यादातर मिलावटें होती हैं जो इस तरह का दूध आता है। तो ये एक तो होती हैं, सबको पता है कि ये होता है पानी मिलावा। लेकिन अगर इसको हम बॉयल करके पीते हैं तो एटलीस्ट बेटा इसके फ़ायदे तो फिर भी हैं, नुकसान तो नहीं है ना, फ़ायदे तो फिर भी हैं। मगर दीगर जो दूध के डब्बे वगैरह आते हैं उस तरफ नहीं जाएं। ये जो खुला दूध मिलता है, ये खुला दूध घर में आना चाहिए और फिर इसको प्रॉपर बॉयल करना चाहिए, और बॉयल करने के यानी उबाल कर फिर इसको आप भी पिए और बच्चों को भी दें। क्योंकि अब यही सबसे बेस्ट, अब हमारे पास यही ऑप्शन है। अब हर घर अपने पास तो गाय भैंस बकरी पालने से रहा, अपने लिए ज़रूरत का दूध खुद ही निकाल लें, तो ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब जो मुयस्सर है उसमें बेहतर से बेहतर ले लें। बास ऐसा लगता है, वो मैंने मालूमात ली है कि बास दूध वाले जो हैं, जो दूध बेचते हैं खुला दूध, वो अच्छे हैं, यानी वो बड़े मतलब के लोग इनकी तारीफ भी करते हैं और मशहूर हैं कि ये कदरे बेहतर दूध देते हैं लोगों को, और वो खराबियां जो दीगर लोगों के साथ है इनके साथ नहीं होती। तो ऐसी दुकान का इंतखाब करें और ऐसी दुकान से भी दूध लेने की कोशिश करें। और अब जहाँ पर मिलावट वाला दूध देने के लिए, मतलब ख़राब दूध देने वाले हैं, तो वहाँ अच्छे लोगों में भी मेरी मालूम को मतलब इजाफा हो रहा है। जस्ट थोड़ी मालूमात लें, हो सकता है वो थोड़ा सा कॉस्टली देंगे। अब जाहिर है कि जितनी पैसे की मिलावट इन्होंने किया, वो मिलावट तो कर नहीं रहे, तो इनको महंगा पड़ेगा ना। अब मतलब आधे लीटर दूध में इन्होंने इतना सारा पानी मिला दिया, तो वो पानी मिला दिया तो वो इनकी कॉस्ट कम पड़ गई कि कोई इतना पानी नहीं मिला था और उसकी वाकई दूध की मिकदार ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली। अब हमको सेहतमंद दूध भी चाहिए और हम रेट्स में भी इनको कोई मतलब वो कहेगा कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, तो दूध वालों को भी चाहिए कि वो अच्छा और मुनासिब कीमत पर ही दूध दें। लेकिन ये कि ख़रीदने वालों को भी अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और अच्छा दूध लेना चाहिए और पीना चाहिए। अब जो ये दूध मैसर है, अब इससे बेहतर को दूध मैसर ही नहीं है, हमें वो मतलब दस्तियाब भी नहीं है, तो इसी को बॉयल करके पिए, इंशाल्लाह इसे फ़ायदा ही होगा। नुकसान का तो मैंने तो कहीं देखा पढ़ा सुना नहीं है ना, मैंने तो प्रोग्राम भी किया दूध वालों के साथ, तो मुझे तो अच्छी खबरें मिली हैं। तो ये हर चीज़ गलत है और ये भी ज़रूरी नहीं हुआ करता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बेटा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
मेरा नाम फैजान अहमद रजा मुहिउद्दीन अत्तारी है। बारिश होती है तो बारिश में भीगना क्या बुरी बात है? बारिश का पानी तो साफ होता है।
बारिश में भीगना, बारिश में नहाने में कोई हर्ज नहीं है, नहाना चाहिए, बल्कि इसके फायदे हैं बारिश में नहाने के। लेकिन कैसे नहाए ये देखना होगा ना, कि हमें हया शर्म इन सब का भी लिहाज रखना है। कपड़े इस तरह के ना हो कि बारिश से जब बदन गीला हो जाए तो फिर बदन की जिल्द اسکیم یہ نظر آئے. اچھا بعض اوقات بارش میں نہانے کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا بھی اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے, تو بعض اوقات میڈیکلی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ آیا بارش میں اس کو نہانا ہے یا نہیں نہانا. تو یہ کیونکہ بارش کے پانی کو مائے مبارک کہا گیا ہے, یہ برکت والا پانی ہے بارش کا پانی, بلکہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جب بھی بارش ہو نا تو دعا کریں, یا اللہ میری بھی مغفرت کر. کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ
میری بھی مغفرت,
یعنی اول آ کے درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میری مغفرت کر,
میرے
ماں باپ کی بھی مغفرت فرما,
ماں باپ کی بھی مغفرت فرما,
اور ساری امت کی مغفرت فرما,
ساری امت کی مغفرت.
اور اس پہ اور دعا کریں, یا اللہ مجھے نیک بھی بنا, تیری پسند کا بندہ بنا, ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا, ہے نا. اس طرح کی بھی دعائیں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا؟
سر بعض اوقات بارش جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو بچہ ہے وہ اپنے امی ابو سے ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نیچے جانا ہے, تو اس کے امی ابو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن وہ ضد کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو اب بچہ صحیح کر رہا ہے نہیں؟
نہیں, بچہ کیسے صحیح کر رہا ہے؟ میں نے تو بیٹا کئی پروگرام میں یہی سمجھایا ہے تمام بچوں کو, آج بھی سمجھاتا ہوں, اور سمجھ جائیے ماں باپ کے آگے ضد نہیں کرنی. آپ خواہش کا اظہار کریں, یو نو خواہش, ڈیزائر. اب اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ امی مجھے نہانا ہے, یہ مجھے جانا ہے, یا مجھے کھانا ہے, یا مجھے یہ پہننا ہے. اوکے, آپ خواہش کا اظہار کریں, لیکن جب ماں باپ منع کر دینا بیٹا ضد نہ کر, یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانی شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے رہو, لیکن ہمارے آس پاس کا ماحول ہی اگر گندا ہو تو ہم کیسے صاف ستھرے ہیں؟
جب آپ کی طبیعت میں بیٹا صفائی اور ستھرائی ہوگی نا, تو آپ کے آس پاس کا ماحول آپ خود صاف ستھرا رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ خود صاف ستھرا رہیں گے تو ہم خود کوشش کریں گے کہ ہمارا رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے سارا صاف ستھرا رہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور آپ جب صاف ستھرے رہیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں بھی صاف ستھرا رہنا ہے, تو انشاءاللہ اس سے معاشرہ صاف ستھرا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کے کچھ سوالات لے کر آپ تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے مزاج میں سمجھانے والی عادت پیدا کریں. میں نارملی والدین کو اس پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایڈریس کرتا ہوں, عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. والدین سے میری ایک خاص ہمبل ریکویسٹ, اور اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کی آپ کو تربیت کرنی ہے, آپ کو بچوں کی اصلاح کرنی ہے, بالکل کرنی چاہیے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی اصلاح کریں. میں نے غور کیا ہے کہ یا تو ہم اس وقت بچے کو سمجھاتے جب ہمارے سامنے اس کی شکایت کی جاتی ہے, یا پھر ایک موقع محل دیکھ کر ایک انوائرمنٹ ماحول کریٹ کرتے ہیں, اور ایک بڑے خوبصورت سے ڈیسنٹ ماحول میں اور انوائرمنٹ میں ہم سمجھاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سیکنڈ جو ہم نے کیا نا, یہ بہت اچھا ہے. فار ایگزامپل, آپ کے سامنے بچے کی شکایت کی گئی, اب بچہ شکایت سن رہا ہے, شکایت سنتے ہی وہ مینٹلی طور پر تیار ہو گیا کہ مجھے سننا پڑے گا, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سم ٹائم وہ اصلاح قبول کرنے کی سچویشن میں شاید ہوتا نہیں ہے. اچھا, پھر شکایت کرنے والے کے تعلق سے کچھ اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ باتیں آ رہی ہوں, تو اس وقت پاسبل ہے کہ وہ مینٹلی اور ہارڈلی فزیکلی مینٹلی وہ شاید تیار نہیں ہے آپ کی بات سن کر سمجھنے کے لیے. میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ موقع نکالیں, مثال کے طور پر والد صاحب اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, جیسے نماز کے بارے میں آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, تو ایک بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, بالکل ایک خوبصورت سے پیارے سے انوائرمنٹ میں آپ نماز کے تعلق سے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا خود اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز کے یہ فائدے ہیں, نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصان آتے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کے بچوں کی جو सहन पर, क्यों वो बड़ा माहौल बना हुआ है ना, वो पिक करने के लिए तैयार हैं और वो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, अब चूंकि उस टाइम पर वो सहमे हुए नहीं है जब आप उसको समझा रहे हैं, वो डरे हुए नहीं है जब आप उनको समझा रहे हैं, तो उस टाइम पर हो सकता है वो आपसे कुछ सवाल करें, आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करें और आपके साथ कुछ सॉल्यूशन मांगे। बट जब वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको खौफ है कभी पड़ेगी, अभी डांट पड़ेगी, अभी धक्का लगेगा और खूब मतलब चीखो पुकार होने वाली है, तो वो शायद इतना खूबसूरत माहौल है ही नहीं समझने और समझाने का। और ये उस वक्त उमूमन ये कैफियत हमारे सामने आ जाती है जब हम उनको कोई अच्छे माहौल में समझाने वाली कैफियत में नहीं आते। अच्छा, ये रोज अगर सेशन लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और महीने में एक आध दो दफा अच्छे माहौल में कहीं कोई खाते पीते हुए बैठते हुए कभी जैसे ये कर लिया, बेटा जरा वो आपसे बात करनी है, जरा टाइम निकालो ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मैं बच्चों से टाइम मांगू कोई हरज नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें और थोड़ा तो उसके साथ एक दो और बातें करके जो उसकी अक्ल व मिजाज के मुताबिक हो और जायज तरीके की हो, तो बातचीत करके जब आप उससे सामने रखेंगे तो फिर आप उसको समझेंगे, बेटा का यूं नहीं यूं होता, यूं नहीं यूं होता, इंशाल्लाह। और देखिए जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप ऐसे 12 सेशन कर लें जैसा मैंने अभी आपको कहा है। देखिए, शाउटिंग नहीं, चीखो पुकार नहीं, नॉर्मलिटी के साथ एक नॉर्मल पर्सन बनकर, अगर आपको लगता है तो मुस्कुराते हुए, जहां संजीदगी है वहां संजीदगी के साथ, और इनको एग्री कराएं और इनको मतलब ये कहेंगे हाँ, और फिर इनकी इस खूबसूरत तरीके से हाँ कहने पर, इनके सुनने पर इनकी हौसला अफजाई करें। या आप यकीन माने ये नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठेंगे और इनको अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने बड़ी रिस्पेक्टेबल अंदाज में आपकी बात सुनी है। मैं नहीं कहता सख्ती की इजाजत नहीं है, वालिदैन को सख्ती करने की इजाजत है, लेकिन नरमी के मराहिल तो तय करें आप। आपने तो पहले स्टेज पर सख्ती कर ली है, नरमी के मराहिल हैं, नरमी के स्टेजेस हैं, पहले उन तमाम स्टेजेस को तय करें। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, अल्लाह करेगा हम अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत करने में कामयाब हो जाएं। आमीन बिजाहिन नबी जी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।